उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर डिप्रेशन के केस रोज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शायद से हम इसके सीरियसनेस को अभी तक जान नहीं पाए हैं। क्योंकि अभी तक बीइंग डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेस्ड फील करना और डिप्रेशन में अभी तक फर्क पता चला नहीं है। वेल, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, डिप्रेस्ड फील करना यानी डिप्रेस्ड मूड मतलब अ स्टेट ऑफ लो मूड एंड एवर्जन टू एक्टिविटी। मतलब ये जस्ट एक फीलिंग है, जैसे हमें खुशी महसूस होती है वैसे ऑफकोर्स हमें दुख भी महसूस होगा। नाउ जैसे कुछ नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी का डेथ हो जाना या फिर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाना, इन सब की वजह से हमें थोड़ा सा लो फील होता है, तो ये डिप्रेस्ड फील करवाता है। ऑन द अदर हैंड, डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, मतलब एक मानसिक बीमारी है जो कम से कम 2 हफ्ते तक रहती है ज़्यादातर सिचुएशंस में। तो इसका इलाज क्या है? ऑफकोर्स आप एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन तो है ही, पर उसके लिए आपको प्रोफेशनल एडवाइस यानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। हम बात करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, मतलब कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके डिप्रेशन का मुकाबला कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोफेसर स्टीफन इलार्डी की लाइफ टाइम द्वारा की गई रिसर्च पे ध्यान देंगे, जहाँ पर उन्होंने पाया कि पिछले 2 जनरेशन में अभी डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हाइक पे है। पर ऐसा क्यों? 2 जनरेशन पहले ये डिप्रेशन शायद ही किसी को पता था। नाउ यहाँ पर जेनेटिक्स का तो कोई रोल हो नहीं सकता, क्योंकि जेनेटिक्स इतनी जल्दी बदल नहीं सकती। तो यहाँ पर उन्होंने पाया कि पिछले 2 जनरेशन में हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। तो जो कारण उन्होंने पाया है तो उसका हल भी उसी के रूट में होगा। तो तभी उन्होंने 6 इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस की बात की है, जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में वापस से ले आएँ तो हम डेफिनेटली डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें डिप्रेशन को क्योर करने के लिए उन्हें यूज़ करना है, अगर हम डिप्रेशन को अवॉइड भी करना चाहते हैं तो भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं उन 6 लाइफस्टाइल चेंजेस की जिनकी बात प्रोफेसर स्टीफन इलार्डी ने की है। तो इसमें से सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नाउ क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन 60% इन टर्म्स ऑफ वेट फैट से बना है। अब इसमें से ज़्यादातर फैट हमारा बॉडी अपने आप बना लेता है, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स की फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है। पर कुछ फैट जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसको बनाने के लिए हमारे बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे डाइट से आती है। डाइट्स जैसे कि फिश, नट्स, सीड्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है। और यह सब हमारे एंसेस्टर्स भी खाया करते थे, तभी उनको डिप्रेशन की कभी कोई बीमारी आई ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। और अगर हमारे ब्रेन को ऐसा नहीं मिलेगा तो बहुत सारी मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन का शिकार हम बन सकते हैं। नाउ सेकंड पे आता है एंगेजिंग एक्टिविटी, मतलब ऐसे किसी काम को करना जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमारा दिमाग उस चीज़ में बिजी रहता है जिससे कि हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। नाउ हालांकि आपको पता ही होगा, खाली टाइम पे हम हमेशा पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। और ऑफ कोर्स जो पास्ट में हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस बारे में सोच सोच के हम अपने आप को उदास करते रहते हैं। पर अगर हम अपने आप को किसी एंगेजिंग एक्टिविटी मतलब किसी काम में बिजी रखेंगे तो हमें ऑफ कोर्स ना पास्ट का ख्याल आएगा ना फ्यूचर का, तो हम अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रख सकते हैं। तीसरे पे आता है फिजिकल एक्टिविटी। नाउ अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि वो लोग दिन भर कितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे, या तो वो खेतीबाड़ी करते थे या फिर वो जंगल में खाना जुगाड़ करने जाते थे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑन एन एवरेज वो 4 से 5 घंटे तक काम करते थे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क। पर अगर हम आज की ज़िंदगी को देखें जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ चुका है, जहाँ पर हम ज़्यादातर या तो ऑफिस में काम करते हैं और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम लैपटॉप के सामने बुक के सामने पढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे बॉडी की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। और हमारी जेनेटिक्स बनी ऐसी है कि हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्क तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं, और डेफिनेटली बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ आने लगेंगे हमारे बॉडी में। नाउ जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, क्या ये डिप्रेशन के क्योर करने में मदद करेगी? तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्च हुई, जहाँ पर ज़ोलॉक्ट जो कि एक पॉपुलर एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है उसको एक्सरसाइज से कंपेयर किया गया। तो ज़ोलॉक्ट को और सिर्फ 30 मिनट की वॉकिंग को साइड बाई साइड कंपेयर किया गया, जिसमें ये पाया गया जो लोग वॉकिंग कर रहे थे यानी जो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे वो लोग इक्वली ज़ोलॉक्ट वाले पेशेंट से बेहतर भी कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा पेशेंट जिन्होंने ज़ोलॉक्ट लिया हुआ था 1 साल के फॉलोअप पे वो लोग वापस डिप्रेशन से गुजर रहे थे। नाउ एक्सरसाइज इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? नाउ हमारे दिमाग के लेवल पे भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में इम्पॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल्स जैसे कि डोपामीन एंड सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो कि कम लेवल पे होने पर डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। और ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि पॉपुलर मेडिकेशंस ट्रिगर करती है। तो आप ही सोचिए, आपको मेडिकेशंस लेनी है या फिर आपको एक्सरसाइज करके सेम इफेक्ट पाना है, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट के। चौथा है सनलाइट एक्सपोजर। नाउ इसमें दो कारण हैं। सबसे पहला यह है कि सनलाइट एक तो अपने नॉर्मल लाइट से 100 गुना ज़्यादा ब्राइटर होता है, जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने में काम आता है। नाउ सर्कैडियन रिदम को आप एक बॉडी के इंटरनल क्लॉक की तरह मान सकते हो, जो कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से सिंक रहती है। नाउ सपोज आप किसी बंद कमरे में बंद हो और वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है, तो आपके बॉडी को ये पता ही नहीं चलेगा कि दिन है कि रात है, जिससे कि प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, जिससे आपको प्रॉपर टाइम पे भूख नहीं लगेगी, आपको प्रॉपर टाइम पे नींद नहीं आएगी और पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सर्कैडियन रिदम को मेंटेन रखें। इसी वजह से हमें दिन में कम से कम धूप में 10 से 15 मिनट तक घूमना चाहिए अपने सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए। नाउ ऑफ कोर्स इससे हमारा मूड भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। और इसका दूसरा कारण है विटामिन डी। नाउ विटामिन डी हमारे स्किन से आता है जब इसको सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है। नाउ विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे मसल हेल्थ के लिए, इवन हमारे बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आज के ज़माने में हम सब ज़्यादातर घर में बैठकर या फिर इंडोर में ज़्यादातर टाइम बिताते हैं, जिसके वजह से डिप्रेशन का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पांचवा है सोशल सपोर्ट। नाउ अगर हम एंशियंट पीरियड में देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग सब कुछ साथ में करते थे, जैसे खाना बनाना, शिकार करना, खाना खाना, खेलना, सोना, इवन वो जब कहीं जाते थे वो भी साथ में जाते थे। और वहीं पर अगर हम आज की ज़िंदगी देखें तो यहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के वजह से हम सब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नाउ ये अकेले रहना पसंद करते हैं या अकेले हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हम इससे एडिक्टेड हो चुके हैं। नाउ यहाँ पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया कि हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो कुछ टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करती है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एंगेजिंग एक्टिविटी से भी लिंक करती है, क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स वो एंगेजिंग एक्टिविटीज़ है। हम अपने फीलिंग्स, अपने भावनाएं उससे शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई नेगेटिविटी है दिमाग में, तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगी। तो हम किसी से बात करके डेफिनेटली अपने मूड को भी बेहतरीन कर सकते हैं, ना कि हम अकेले बैठकर अपने अतीत को खोदते रहें और डिप्रेशन को अपने अंदर लाने का एक मौका दे दें। छठवां और आखिर में जो है वो है हेल्दी स्लीप लेना। यहाँ पर अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें तो हम कभी कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं, कभी 3 बजे सोते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम या तो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, या फिर कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं, या फिर कुछ कर रहे होते हैं, जिसके कारण अगले दिन हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और हमें चिड़चिड़ापन या फिर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सोने से पहले हमें कंप्यूटर या फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि मेलेटोनिन को प्रोड्यूस होने से रोकती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसकी वजह से हमें नींद आती है। तो ये 6 लाइफस्टाइल चेंजेस थे जो हम अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके डिप्रेशन को ना ही अवॉइड बल्कि क्योर भी कर सकते हैं। पर लास्ट में एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस ज़रूर लें। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारी ब्रेन को फुल कैपेसिटी में काम करने से रोकती है। जैसे कि हम लोग फ़ोन करते करते ड्राइव करते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि जिस चीज़ में हमें अटेंशन चाहिए, जिस चीज़ पर हमें फोकस चाहिए, उस चीज़ को ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। आजकल हमने हाई स्ट्रेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया है, क्योंकि आजकल एक वर्कहॉलिक रहना एक जैसे ट्रेंड बन गया है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल रहे हैं कि जितना दिमाग हमारा स्ट्रेन में रहेगा, जितना दिमाग हमारा स्ट्रेस में रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी इन कंपेयर टू द ब्रेन विच इज़ नॉट सो स्ट्रेस्ड। इन केस अगर हमें कोई ऐसा एजुकेशन एनवायरनमेंट बनाना है जो कि हमारे ब्रेन को परफेक्टली वर्क कराने वाली एनवायरनमेंट के एकदम अपोजिट हो, तो हम लोग कुछ ऐसे ही एजुकेशन क्लासरूम्स बनाएंगे जो अभी हैं कॉलेज में या स्कूल्स में। अब बदकिस्मती से जो ब्रेन साइंटिस्ट है उनका हार्डली कोई कॉन्वर्सेशन होता है टीचर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और इवन CEOs से, जिसके वजह से हमें न्यूरोसाइंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस लूप में वापस आने के लिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही फुल कैपेसिटी पे वर्क करता है, जो कि आजकल के एनवायरनमेंट से हमें नहीं मिलता है। तो इस बुक में 12 ऐसे रूल्स की बात की गई है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके इस लूप के अंदर वापस आ सकते हैं और अपने ब्रेन को बेस्ट कैपेसिटी पर काम करा सकते हैं। तो इस बुक में 12 ब्रेन रूल्स है, बट हम 5 मेन रूल्स को डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिसमें से पहला है वर्कआउट या फिर मूवमेंट। सिविलाइजेशन, जिसने हमें जीने का एक तरीका दिया, हमारी सोसाइटी को एक फॉर्मेट दिया, एक स्ट्रक्चर दिया, बट साथ में ये अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव ऐसे इम्पैक्ट भी लेके आया जो कि हमारे मेंटल एंड फिजिकल लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ज़रा याद कीजिए अपने एंसेस्टर्स को या फिर अपने पूर्वजों को जो कि दिन में 11-11, 12-12 मील चला करते थे, लेकिन अगर वहीं पर हम आज की ज़िंदगी देखें जहाँ पर हम वर्क स्टेशन पे या फिर स्कूल कॉलेज में 8-9 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, और यहीं पर ज़रा सोचिए अगर हमारे पूर्वज भी ऐसे 8-9 घंटे बैठ कर काम करते तो क्या होगा, शायद जल्दी किसी का शिकार बन जाते। कहने का मतलब यह है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत जल्दी बदला है, फ्रॉम फिजिकल लाइफस्टाइल टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिससे हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर हमें अपने बॉडी और मेंटल हेल्थ को वापस रिवाइव करना है तो हमें शायद से इतिहास को वापस दोहराना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगलों में वापस भटकते रहे शिकार की खोज में। कहने का मतलब यह है कि हमें बस अपनी ज़िंदगी में फिजिकल मूवमेंट को वापस लाना पड़ेगा। दूसरी बात है इनफ स्लीप। नाउ इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक रिसर्च किया गया जहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 7 घंटा वीक डेज में और 40 मिनट ज़्यादा इन द वीकेंड्स में दिया गया। मतलब वो जितना सोते थे उससे बस 40 मिनट या 50 मिनट ही कम स्लीप दिया गया। इससे पता चला कि उनके मार्क्स जो कि टॉप 10% में आते थे, उनके मार्क्स बॉटम के 9% स्टूडेंट्स से मैच होने लग गए। मतलब सिर्फ स्लीप को कम करके एक टॉपर को एवरेज बनाया जा सकता है। ऑल्सो स्लीप से हमारी कॉग्निटिव इन्हांसमेंट होती है, हमारी सोचने की या फिर हमारे फोकस करने की एनर्जी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं कि स्लीप सिर्फ स्टूडेंट के लाइफ को अफेक्ट करता है, अगर हम स्लीप को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए तो हमारी वर्क क्रिएटिविटी भी बहुत हद तक एनहांस हो पाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे का स्लीप एफिशिएंट स्लीप माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेगी कि हमारी बॉडी को कितनी स्लीप सफिशियंट रहेगी, बट देखा जाए तो 8-9 आवर्स ऑफ स्लीप इज सफिशियंट। तीसरी बात है मल्टीटास्किंग। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए जनरली हम देखेंगे कि दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो दिन भर फ़ोन में लैपटॉप में लगे रहते हैं और उनके बहुत सारे टैब्स ओपन रहते हैं, बहुत सारे मतलब दे आर मल्टीटास्कर्स। तो उनको रिसर्चर्स ने नाम दिया हैवी मीडिया मल्टीटास्कर्स, जो कि दिन भर लगे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते फ़ोन को या फिर लैपटॉप्स को, उनको नाम दिया गया लाइट मीडिया मल्टी यूजर्स। मतलब ज़्यादातर वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स को उसी टाइम यूज़ करते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हद से ज़्यादा बेफालतू के लगे रहें। तो इन दोनों में रिसर्च करवाया गया, इन दोनों में कुछ टेस्ट लिए गए जिनमें रिसर्चर्स ने क्या किया, जो हैवी यूज़र्स थे उनको एक पर्टिकुलर काम दिया और साइड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रखे। ऑन द अदर हैंड कुछ लाइट यूज़र्स थे उनको भी सेम काम दिया और डिस्ट्रैक्शंस दिए। तो आपको अगर मैं पूछूं इन दोनों में से किसने बेटर परफॉर्म किया होगा, आपकी तरह मैंने भी सोचा, इवन साइंटिस्ट लोगों को भी यही लगा कि जो हैवी यूजर्स थे वो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको आदत है बहुत सारे काम साथ में करने के, मल्टी टैब्स ओपन करके, तो उनका फोकस हर जगह रहता है, राइट। उनको भी ऐसा लगा कि मल्टी यूजर्स जो हैं, जो हैवी यूजर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यह पाया गया कि जो लाइट यूजर्स थे उन्होंने हैवी यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन दी, क्योंकि इसके बीच में ये लॉजिक है कि जो लाइट यूजर्स है वो लोग एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करते हैं और उनके दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शन है वो उतनी नहीं चलती, मतलब जो दूसरी चीज़ें हो रही है उस पर वो लोग उतना फोकस करते नहीं। ऑन द अदर हैंड जो मल्टी यूजर्स हैं उनके दिमाग में एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे उनका जो अटेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था अलग अलग चीज़ों में, तो इसके वजह से वो लोग एक चीज़ पे प्रॉपरली फोकस कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस भी कम हो रहा था, गिर रहा था लाइट यूजर्स के कंपेयर में। इसके बाद आता है रिपीट। यहाँ पर साइंटिस्ट एंथनी वैगनर ने एक टेस्ट किया जहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स लिए गए, ठीक है ना, दो ग्रुप्स बनाए गए स्टूडेंट्स के, वहाँ पर एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ वर्ड्स दिखाए गए, ग्रुप बी में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्ड्स दिखाए गए, उनको बोला कि नहीं याद करें। लेकिन याद करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया उसमें यह था कि जो ग्रुप ए का स्टूडेंट्स थे उनको बहुत सारे रिपीटेशंस दिए गए वर्ड्स के, उनको बहुत बार रिपीट करने थे उन वर्ड्स को। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स थे उनको वो वर्ड्स पहले दिखाए गए, फिर उन्हीं वर्ड्स को कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ देर बाद फिर से उन वर्ड्स को दिखाया गया, फिर से कुछ देर बाद उनको फिर से वर्ड्स दिखाए गए, मतलब ऑन ए इंटरवल ऑफ टाइम उनको कुछ टाइम पीरियड के अंदर उन वर्ड्स को दिखाया गया। तो अब आपको क्या लगता है कि दोनों ग्रुप में से किन को वो सारे वर्ड्स याद रहेंगे? ऑफकोर्स जो बी ग्रुप के लोग थे उन्होंने बेटर किया इस चीज़ में। ना इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक मशीन है जिसका नाम है fMRI मशीन। ना इसमें होता क्या है कि हमारे लेफ्ट इन्फीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को देखता है कि एक्टिव कब हो रहा है। तो उसमें ये पाया गया कि उनका लेफ्ट इन्फीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव था और वो लोग ज़्यादा वर्ड्स रिमेंबर कर पा रहे थे एज कम्पेयर टू ए विथ मोर एक्यूरेसी। फिर आता है एक्सप्लोर। अब यहाँ पर हम बेबीज को अगर देखें या फिर हम छोटे बच्चों को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि उनमें कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, वो हर चीज़ को सीखने के नज़रिए से देखते हैं। तभी ये साइंटिस्ट का भी कहना है कि बेबीज सबसे ज़्यादा लर्न करती है क्योंकि वो हमेशा उनके अंदर एक अर्ज होती है सीखने की, जो कि अक्सर ये देखा गया है कि उम्र के साथ साथ हमारी ये अर्ज, हमारी ये सीखने की चाह कम होने लगती है। और अगर हम इसे दिमाग के लेवल पर भी देखें, अगर हम क्यूरियस नहीं होंगे, अगर हमें नई नई चीज़ें जानने की इच्छा नहीं होगी तो हमारा ब्रेन भी ग्रो नहीं करेगा और हमारे ब्रेन की कंडीशन जो पहले थी वो अभी भी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। होप हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे इस रूल्स को और देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है ब्रेन में, क्या इंप्रूवमेंट आता है ब्रेन में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।